श्रोताओं नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार पटेल आप लोगों के लिए जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत चौथे अध्याय जिसका शीर्षक जनसंख्या परिवर्तन पॉपुलेशन चेंज की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। जनांकी तथा जनसंख्या अध्ययन में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसके द्वारा वहाँ की आर्थिक प्रगति, सामाजिक सांस्कृतिक दशाओं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक विचारों एवं दशाओं आदि का पता चलता है। इसके द्वारा ही जननांकी तथा उससे संबंधित अन्यान्य तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व के अनेक देशों में उत्पन्न जनसंख्या विस्फोट की समस्या, खाद्य पदार्थ तथा अन्य जीवनोपयोगी साधनों की बढ़ती मांग, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न पर्यावरणीय क्षति तथा जीवन स्तर में ह्रास आदि जनसंख्या वृद्धिजन समस्याओं ने जनसंख्याविदों, अर्थशास्त्रियों, भूगोलवेत्ताओं और अन्य समाज विज्ञानियों का ध्यान जनसंख्या परिवर्तन के अध्ययन की ओर आकर्षित किया है। वास्तव में किसी देश या क्षेत्र में होने वाला जनसंख्या परिवर्तन उसकी जननांकीय गतिशीलता का केंद्र बिंदु होता है, जहां से अन्य जननांकीय तत्वों की माप की जा सकती है। जनसंख्या संरचना के निर्धारण में इसकी मुख्य भूमिका होती है। अतः जनसंख्या परिवर्तन के द्वारा किसी प्रदेश की जनसंख्या संरचना को समझना सुगम हो जाता है। जनसंख्या परिवर्तन अर्थ एवं माप, पॉपुलेशन चेंज मीनिंग एंड मेजरमेंट। जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ है एक निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में होने वाला परिवर्तन। यह परिवर्तन धनात्मक या सकारात्मक अथवा ऋणात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। इसकी गणना के लिए जनगणना अवधि के प्रारंभिक वर्ष की जनसंख्या को आधार जनसंख्या माना जाता है और उसे अंतिम वर्ष की जनसंख्या से घटाकर अंतर ज्ञात किया जाता है। यदि प्रारंभिक वर्ष की जनसंख्या अंतिम वर्ष की जनसंख्या से कम है तब परिवर्तन धनात्मक कहलाता है, क्योंकि इस दशा में जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसके विपरीत अंतिम वर्ष की जनसंख्या प्रारंभिक वर्ष की जनसंख्या से कम होने पर वह जनसंख्या ह्रास की सूचक होती है, अतः इसे जनसंख्या का ऋणात्मक परिवर्तन कहते हैं। इन जनसंख्या परिवर्तनों की माप निरपेक्ष संख्यात्मक अंतर और सापेक्ष प्रतिशत अंतर दोनों प्रकार से की जाती है। जनसंख्या परिवर्तन की अवधि कुछ भी हो सकती है, किंतु सामान्यतः जनसंख्या परिवर्तन का अध्ययन 10 वर्षीय अवधि डिकेडल और डिसेंशियल पीरियड के लिए किया जाता है, क्योंकि यह दो क्रमिक जनगणनाओं के मध्य की अवधि है और इससे अनुकूल महत्वपूर्ण जननांकीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं। निरपेक्ष परिवर्तन और सापेक्ष परिवर्तन में अंतर इस प्रकार है। ए, निरपेक्ष परिवर्तन एब्सोल्यूट चेंज। कुल संख्या में परिवर्तन की माप अत्यंत सरल है। इसकी गणना किसी क्षेत्र या प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों की पूर्ववर्ती संख्या को उसी क्षेत्र के व्यक्तियों की परवर्ती संख्या से घटाकर की जाती है। इस प्रकार जनसंख्या का निरपेक्ष परिवर्तन किसी निश्चित अवधि के अंतिम और प्रारंभिक वर्षों की जनसंख्या के संख्यात्मक अंतर को प्रकट करता है, जो धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी प्रकार का हो सकता है। एक जनपद की जनसंख्या यदि 1981 ईस्वी में 50,640 और 1991 ईस्वी में 60,230 है तो 10 वर्षीय परिवर्तन 9,590 होगा। दूसरे जनपद की जनसंख्या सन 1981 ईस्वी में 80,300 और 1991 ईस्वी में 75,200 होने पर जनसंख्या परिवर्तन -5,100 होगा। इस प्रकार प्रथम जनपद में जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक तथा दूसरे जनपद में ऋणात्मक है। बी, सापेक्ष परिवर्तन, रिलेटिव चेंज, या प्रतिशत परिवर्तन की माप के लिए आरंभिक वर्षों की जनसंख्या को आधार माना जाता है। नियत अवधि में अंतिम वर्ष और प्रारंभिक वर्ष की जनसंख्याओं के अंतर को प्रारंभिक वर्ष की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है और पुनः उसमें 100 से गुणा किया जाता है। इस प्रकार जनसंख्या परिवर्तन की माप प्रतिशत में होती है। इसकी गणना का सूत्र इस प्रकार है, सापेक्ष परिवर्तन बराबर परिवर्ती जनसंख्या माइनस पूर्ववर्ती जनसंख्या कुल के बटे पूर्ववर्ती जनसंख्या गुणे 100। जनसंख्या के निरपेक्ष परिवर्तन की भांति सापेक्ष परिवर्तन भी धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में जनसंख्या वृद्धि सार्वभौमिक और प्रबल समस्या बन गई है और इस कुछ इन्हें गिने अपवाद देश ही हो सकते हैं जहां जनसंख्या के ह्रास की प्रवृत्ति हो। यही कारण है कि वर्तमान संदर्भ में जनसंख्या परिवर्तन का सामान्य अर्थ जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन इंक्रीज से लगाया जाता है और इसका प्रयोग जनसंख्या वृद्धि के पर्यायवाची के रूप में किया जाने लगा है। जनसंख्या वृद्धि दर, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि की अधिक सार्थक माप जनसंख्या की वृद्धि दर ग्रोथ रेट द्वारा की जाती है। जनसंख्या वृद्धि दर के आकलन हेतु कई सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें निम्नलिखित 3 सूचकांकों का प्रयोग अधिक होता है। ए, अंगणितीय परिवर्तन, अर्थमेटिक चेंज। इसकी गणना के लिए 2 क्रमिक जनगणना वर्षों की जनसंख्याओं के योग के आधा से वार्षिक परिवर्तन की मात्रा को विभाजित करके उसमें 100 से गुणा किया जाता है। अंगणितीय परिवर्तन बराबर एसी बटा 1/2 इन ब्रैकेट पी एन प्लस पी जीरो गुणे 100, जबकि एसी बराबर वार्षिक परिवर्तन की मात्रा, पी जीरो बराबर नियत अवधि के प्रारंभ की जनसंख्या, पी एन बराबर नियत अवधि के अंत की जनसंख्या। बी, गुणोत्तर परिवर्तन, जियोमेट्रिक चेंज। इसकी गणना हेतु यह मान लिया जाता है कि जनसंख्या परिवर्तन की दर प्रतिवर्ष या अन्य समय अंतराल समान रहती है, अर्थात जनसंख्या की वृद्धि या ह्रास की दर नियत अवधि में प्रतिवर्ष समान होती है। इस प्रकार एक नियत समय अवधि में जनसंख्या की गुणोत्तर या ज्यामिति परिवर्तन चक्रवृद्धि परिवर्तन कंपाउंड चेंज को प्रकट करता है। जनसंख्या वृद्धि दर की गणना के लिए क्लार्क ने इसी विधि को अपनाया है। इसकी गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। R बराबर इन ब्रैकेट अंडर रूट P1/P0-1 ब्रैकेट क्लोज गुड़े मल्टीप्लाई बाई 100, जहां P0 बराबर पिछली जनगणना में जनसंख्या, P1 बराबर अगली जनगणना में जनसंख्या, T बराबर दो जनगणनाओं के मध्य का समय, R बराबर वार्षिक वृद्धि दर। C चर घातांक की परिवर्तन एक्सपोनेंशियल चेंज। इसकी गणना के लिए यह कल्पना की जाती है कि परिवर्तन की दर सतत समान रूप से क्रियाशील रहती है। यह चक्रवृद्धि परिवर्तन कंपाउंड चेंज का ही परिवर्तित रूप है, जिसमें कालावधि नियत के स्थान पर अत्यंत दीर्घ अथवा अनंत हो जाती है। जब चक्रवृद्धि की गणना अपरिमित समयावधि के अति लघु अंतराल के अनुसार की जाती है, तो उसे चर घातांकी परिवर्तन कहते हैं। सामान्यतः गुणोत्तर वृद्धि दर की तुलना में चर घातांकी वृद्धि दर कम होती है। इसमें जनसंख्या वृद्धि की मात्रा जनसंख्या आकार से निर्धारित होती है। जनसंख्या आकार जितना ही विशाल होगा, वृद्धि दर उतनी ही तीव्र होगी। इसकी गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र प्रयोग किया जाता है। इन ब्रैकेट 1+R ब्रैकेट क्लोज के पावर n इक्वल टू P1/P0 होल इक्वल टू n log ब्रैकेट में 1+R ब्रैकेट क्लोज बराबर log P1/P0 बराबर log 1+R इन ब्रैकेट इक्वल टू 1/n log P1/P0, जहां P0 बराबर पिछली जनगणना की जनसंख्या, P1 बराबर अगली जनगणना की जनसंख्या, n बराबर दो जनगणनाओं के मध्य अंतराल वर्षों की संख्या, R बराबर वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि के प्रकार टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। किसी स्थान के जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों जन्म मृत्यु तथा स्थानांतरण के योगदान के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक वृद्धि नेचुरल ग्रोथ, वास्तविक वृद्धि एक्चुअल ग्रोथ। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। किसी स्थान या क्षेत्र की कुल जनसंख्या में एक नियत समय अवधि के पश्चात कुल जन्मों और कुल मृत्युओं के कारण आने वाले अंतर को प्राकृतिक या नैसर्गिक वृद्धि माना जाता है। प्राकृतिक वृद्धि की दर की गणना के लिए किसी नियत समयावधि में कुल जन्मों की और कुल मृत्युओं की संख्या में अंतर ज्ञात करके उसमें आरंभ वर्ष की जनसंख्या से भाग देकर परिणाम में 100 से गुणा किया जाता है। इसकी गणना का सूत्र इस प्रकार है। प्राकृतिक वृद्धि दर बराबर TB-TD/P0 मल्टीप्लाइज बाई 100, वेयर टीबी बराबर जन्मों की कुल संख्या टोटल बर्थ्स, टीडी इक्वल टू मृत्युओं की कुल संख्या टोटल डेथ्स, पी जीरो आरंभिक वर्ष की कुल जनसंख्या। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की गणना दशकीय डिकेडल अथवा वार्षिक आधार पर की जा सकती है। जननांकी विश्लेषण में प्राकृतिक वृद्धि दर का व्यापक प्रयोग होता है, किंतु इससे वास्तविक जनसंख्या वृद्धि का प्रदर्शन नहीं हो पाता, क्योंकि जनसंख्या परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण कारक जनसंख्या स्थानांतरण को इसमें समाहित नहीं किया जाता है। इसकी गणना में व्यक्तियों के आयु वर्ग पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार दो स्थानों या क्षेत्रों की जनसंख्या संरचना में अंतर होते हुए भी प्राकृतिक वृद्धि की समानता पाई जाती है। इसके विपरीत दो क्षेत्रों की समान संरचना वाली जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर के में अंतर के कारण प्राकृतिक वृद्धि दर में भिन्नता भी हो सकती है। बी, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। किसी क्षेत्र में एक निश्चित समयावधि में अंतिम वर्ष की कुल जनसंख्या और प्रारंभिक वर्ष की कुल जनसंख्या में अंतर को प्रारंभिक वर्ष की कुल जनसंख्या से विभाजित करके उसमें 100 से गुणा किया जाता है। इस प्रकार जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त होती है। यह एक नियत समय अंतराल, सामान्यतः प्रति दशक या प्रतिवर्ष में प्राकृतिक वृद्धि के प्रतिशत अंतर वृद्धि या ह्रास को प्रकट करती है। इसकी गणना का सूत्र इस प्रकार है, वास्तविक वृद्धि दर इक्वल टू पी एन माइनस पी जीरो होल बाई पी जीरो मल्टीप्लाइज बाई 100, वेयर पी जीरो नियत समय अवधि में प्रारंभिक वर्ष की जनसंख्या एंड पी एन इक्वल टू नियत समयावधि में अंतिम वर्ष की जनसंख्या। प्राकृतिक वृद्धि के निर्धारण में जन्म दर, मृत्यु दर और स्थानांतरण का योगदान होता है। किसी नियत समयावधि में जनसंख्या अंतर ज्ञात करने के लिए स्थान या क्षेत्र विशेष के कुल जन्मों प्लस अप्रवासों से में से कुल मृत्यु प्लस उत्प्रवास को घटा दिया जाता है। इसके लिए अंतिम वर्ष की कुल जनसंख्या में से प्रारंभिक वर्ष की कुल जनसंख्या को घटाया जाता है। यह अंतर धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों में से किसी एक प्रकार का हो सकता है। वास्तविक वृद्धि को आयु वर्गानुसार भी ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशिष्ट आयु वर्ग में जनसंख्या के अंतर की गणना की जाती है। जनसंख्या वृद्धि की गणना संबंधी सावधानियां। किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि के सही परिकलन के लिए प्रयुक्त आंकड़ों का तुलनीय होना नितांत आवश्यक होता है। विभिन्न जनगणनाओं में प्राप्त आंकड़े कुछ कारणों से वास्तविक रूप से तुलनीय नहीं रह जाते हैं। इसके लिए मुख्य कारण निम्नलिखित है, ए, क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन। प्रशासनिक सुविधा या राजनीतिक कारणों से प्रशासनिक इकाइयों, प्रांत, जनपद, तहसील आदि की सीमाओं में समय समय पर परिवर्तन कर दिए जाते हैं। जिस क्षेत्रीय इकाई के आधार पर एक जनगणना में आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, अगली जनगणना तक यदि उसकी सीमा में परिवर्तन हो जाता है, तब दोनों जनगणनाओं के जनसंख्या आंकड़े तुलनीय नहीं रह जाते हैं। अतः जनसंख्या परिवर्तन की सार्थक गणना के लिए क्षेत्रीय सीमा में हुए परिवर्तन से उत्पन्न त्रुटि को संशोधित करके ही आंकड़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा इससे अशुद्ध और भ्रामक परिणाम ही प्राप्त होगा। राज्यों, जनपदों, तहसीलों आदि की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन हो जाने पर विभिन्न जनगणना वर्षों के लिए जनसंख्या वृद्धि का परिकलन कठिन हो जाता है और उसमें परिवर्तन के अनुसार संशोधन आवश्यक होता है। बी, परिभाषा तथा उपागम में परिवर्तन। कभी-कभी एक जनगणना से दूसरे जनगणना में जनसंख्या के कुछ तत्वों की परिभाषा अथवा अध्ययन उपागम अप्रोच में उल्लेखनीय परिवर्तन कर दिए जाते हैं। इन परिवर्तनों के कारण भी दो भिन्न जनगणनाओं के जनसंख्या आंकड़े पूर्णतः तुलनीय नहीं रह जाते हैं। भारतीय जनगणना में कार्यशील जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन या वर्कर, व्यवसायिक वर्ग, नगर टाउन आदि की परिभाषाएं तथा संकल्पनाएं विभिन्न जनगणनाओं में परिवर्तनशील रही हैं। ऐसे आंकड़ों का प्रयोग मौलिक रूप से नहीं किया जा सकता। अतः जनसंख्या परिवर्तन की गणना के लिए आवश्यक संशोधन के पश्चात ही ऐसे आंकड़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि एक जनगणना में वास्तविक उपागम डिफैक्टो अप्रोच को अपनाया गया हो और दूसरी जनगणना में विधिक उपागम डी जीरो अप्रोच को, तो दोनों जनगणनाओं के आंकड़े पूर्णतः तुलनीय नहीं रह जाते हैं। अतः सार्थक परिणाम की प्राप्ति के लिए किसी एक जनगणना के आंकड़े में आवश्यक संशोधन अनिवार्य हो जाता है। सी, जनगणना त्रुटियों में अंतर। कभी-कभी दो भिन्न वर्षों की जनगणना त्रुटियों में भी अंतर मिलता है, जो आंकड़ों की तुलनीयता को कम कर देता है। कभी-कभी जनगणना में कुछ तथ्य दो बार गिन लिए जाते हैं अथवा कुछ तथ्य गणना से वंचित रह जाते हैं या छूट जाते हैं। जनगणना संबंधी इन त्रुटियों को देखते हुए जनसंख्या भूगोल के विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह इन त्रुटियों के प्रति सजग रहे और जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग करते समय उनमें आवश्यक संशोधन करके ही प्रयोग करे, जिससे वे तुलनीय हो सकें। इसके लिए आंकड़ों के प्रयोगकर्ता को जनगणना की त्रुटियों में संशोधन संबंधी तकनीक में कुशल होना आवश्यक होता है। उपयुक्त सूचनाओं के अभाव में आंकड़ों के संशोधन का कार्य कठिन होता है, किंतु यदि जनगणना विभाग ऐसी त्रुटियों के संबंध में सूचनाओं या टिप्पणियों का प्रकाशन करे तो उनके संशोधन में सुगमता हो सकती है। जनगणना आंकड़ों की तुलनीयता तथा उपयोगिता में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि जनगणना विभाग परिभाषिक परिवर्तनों तथा तकनीकी त्रुटियों को भी स्पष्ट करे। जनगणना विभाग, पहला, क्षेत्रीय विस्तार संबंधी परिवर्तन, दूसरा, परिभाषा संबंधी परिवर्तन, तीसरा, जनगणना में त्रुटि की मात्रा संबंधी टिप्पणियों का प्रकाशन करके शोधकर्ता के कार्य को सुगम तथा परिणाम को उपयोगी बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन मूलतः तीन घटकों का परिणाम होता है। पहला प्रजननता, फर्टिलिटी। दूसरा मर्त्यता, मोर्टैलिटी। तीसरा स्थानांतरण या प्रवास, मूवमेंट और माइग्रेशन। ए, इस पहला प्रजननता, फर्टिलिटी। किसी स्त्री द्वारा एक निश्चित समयावधि में जन्मे सजीव शिशुओं की संख्या को उसकी प्रजननता कहते हैं। प्रजननता की माप शिशुओं की संख्या से ज्ञात की जाती है। किसी समाज में एक नियत अवधि में जन्मे सजीव शिशुओं की आवृत्ति ही प्रजननता की मान मानी जाती है। इस प्रकार यह स्त्री की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी की द्योतक है। इससे जनसंख्या आकार में वृद्धि होती है। दूसरा मर्त्यता, मोर्टैलिटी। मृत्यु मानव जीवन की एक अनिवार्य घटना है जिससे जनसंख्या के आकार में कमी आती है। एक नियत समयावधि में मृत्युओं की संख्या को मर्त्यता कहा जाता है। मर्त्यता जनसंख्या की संरचना तथा वितरण को भी प्रभावित करती है। तीसरा स्थानांतरण या प्रवास, मूवमेंट और माइग्रेशन। जब किसी कारण से मनुष्य या मानव समूह के निवास स्थान में परिवर्तन होता है तब मनुष्य को एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान करना पड़ता है। मनुष्य के स्थान परिवर्तन की घटना को प्रवास कहते हैं। जिस स्थान को वह छोड़ता है वहां इस स्थानांतरण का उत्प्रवास इमाइग्रेशन और जहां जाकर बसता है उसे वहां इसे आप्रवास इमाइग्रेशन कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तनों के इन तीन घटकों का विस्तृत विवेचन अग्रांकित पृथक पृथक अध्यायों में किया गया है।